sisters and brothers of America. It fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world.
ये भाषण है महान चिंतक स्वामी विवेकानंद का, जो उन्होंने विश्व धर्म संसद शिकागो में 11 सितंबर 1893 को दिया था। कहा जाता है कि जैसे ही विवेकानंद ने बोलना शुरू किया, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, वहां मौजूद लोग खड़े हो गए और उनके सम्मान में पूरे 2 मिनट तक तालियां बजती रहीं। बाद में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा, विवेकानंद ने दुखी और हतोत्साहित हिंदुओं के दिमाग के लिए एक टॉनिक का काम किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि उनके भूत की जड़ें मजबूत हैं जिन पर वो गर्व कर सकते हैं। आखिर एक प्रभावशाली भाषण की पहचान या परिभाषा क्या है? भारतीय लोगों द्वारा दिए गए चर्चित भाषणों पर द पेंग्विन बुक ऑफ मॉडर्न इंडियन स्पीचेस लिखने वाले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राकेश बाताबयाल बताते हैं,
सबसे बढ़िया वक्ता या स्पीच वही होगा जो ऑडियंस को बांध रखे अपने साथ और साथ में ऑडियंस को कुछ ऐसा दे दे कि ऑडियंस अगले आधे घंटे कम से कम उस पर सोचे। बांधने के लिए एक शैली चाहिए होगी, स्टाइल चाहिए होगी, शब्द चाहिए होंगे, वोकैबुलरी होनी चाहिए।
महात्मा गांधी ने जो भाषण फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह पर दिया था, उसने भी बहुत से भारतवासियों का ध्यान खींचा था। गांधी तब तक भारतीय राजनीति में रच बस नहीं पाए थे और वैसे भी गांधी कभी भी बहुत अच्छे वक्ता नहीं रहे, लेकिन उस मंच पर मौजूद लोगों को गांधी की स्पष्टवादिता नागवार गुजरी और मंच के सभापति ने उन्हें अपना भाषण बीच में रोक देने के लिए कहा। गांधी पर किताब लिखने वाले प्रमोद कपूर बताते हैं,
उनको जब मौका दिया बोलने का तो उन्होंने पहली बात तो कही गंदगी की बात बताई कि भाई बनारस में क्यों लोग साफ नहीं रखते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि ये महाराजा लोग बैठे हैं यहाँ पर और ये जवाहरात और इस सब से लदे हुए हैं, इस ऐसे एक गरीब देश में ये शोभा नहीं देता कि आज यूनिवर्सिटी खुल रही है उसमें इस तरह से ये आए हैं। और ये बोलते रहे करीब 15-20 मिनट तक, तब एनी बेसेंट उठी और उन्होंने कहा स्टॉप मिस्टर गांधी, स्टॉप नाउ। तो देखा कि धीरे धीरे जितने महाराजा थे एक एक उठ के सब जाने लगे। मालवीय जी उनके पीछे भागे कि नहीं नहीं महाराज बुला दी, आइए वापस, इनको चुप करा दिया गया है, आप आ जाइए वापस, लेकिन तब तक भंग हो गई थी सभा इनकी।
4 जुलाई 1944 को जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पूरे देश से आह्वान किया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो पूरा भारत जैसे जागृत हो गया था।
नेहरू एक लेवल पे इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं हम लोगों के लिए, उत्साह भी उनमें भी है। सुभाष जो है इन्फेक्शियस है, कुछ भी करें हम उनके साथ है वो बात है। नेहरू के साथ जाने के लिए हम सोचते हैं अरे तो इतनी बड़े हम कैसे उनके पास कैसे जा पाएंगे, सुभाष के साथ हम जाने को तैयार है। जब सिंगापुर वगैरह से जो वो आजाद हिंद फौज की जो उनकी जो एक जो सबसे बढ़िया तकरीर जो है जिसमें उन्होंने कहा कि गांधी द फादर ऑफ द नेशन गिव अस द ब्लेसिंग्स, वो सुभाष की महत्ता के साथ साथ नेशनल मूवमेंट की महत्ता को भी, इतनी लड़ाई के बाद वो गांधी, उनका एक ग्रह तो रहा ही कि गांधी ने निकाला उनको, लड़ाई हुई लेकिन उसके बाद भी कह रहे फादर ऑफ द नेशन आप हैं। वो बंगाली थे, बंगला उनकी भाषा है, हिंदी सीखी नहीं, लंदन चले गए, वहां से लौटे, इसलिए उनकी हिंदी में वो हिंदुस्तानी पुट नहीं था, लेकिन उन्होंने उसमें कोशिश की लाने की, तो उसके उनकी भाषा में एक दूसरा जो एक नॉर्मल हिंदुस्तानी जो गंगा जमुना इलाके का नहीं है साउथ इंडियन है, वो कैन एसोसिएट देमसेल्व्स विद हिज हिंदी और हिंदुस्तानी स्पीच।
हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल न हो। विभिन्न दिशाओं में बिखरी सारी ताकत जितना शीघ्र हम केंद्रित कर सकेंगे उतना ही जल्द हम आजादी हासिल कर सकेंगे।
14 अगस्त 1947 की आधी रात भारत की आजादी पर जवाहरलाल नेहरू के दिए भाषण को कौन भूल सकता है? नेहरू के सचिव रहे एमओ मथाई अपनी किताब रेमिनिसेंसेस ऑफ नेहरू एज में लिखते हैं,
नेहरू कई दिनों से अपने भाषण की तैयारी कर रहे थे। जब उनके पीए ने वो भाषण टाइप कर मुझे दिया तो मैंने देखा कि एक जगह नेहरू ने डेट विद डेस्टिनी मुहावरे का इस्तेमाल किया था। मैंने रॉजेट का शब्दकोश देखने के बाद नेहरू से कहा कि डेट शब्द इस मौके के लिए सही शब्द नहीं है, क्योंकि अमरीका में इसका आशय महिलाओं या लड़कियों को घूमने ले जाने के लिए किया जाता है। मैंने उन्हें सुझाव दिया कि वो डेट की जगह रॉन्डेवू या ट्रिस्ट शब्द का इस्तेमाल करें। मैंने उन्हें ये भी बताया कि रूजवेल्ट ने युद्ध के दौरान दिए गए भाषण में रॉन्डेवू शब्द का प्रयोग किया है। नेहरू ने एक क्षण के लिए सोचा और फिर अपने हाथ से डेट शब्द काटकर ट्रिस्ट लिखा। नेहरू के भाषण का वो आलेख आज भी नेहरू म्यूजियम लाइब्रेरी में सुरक्षित है।
Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially.
उसी शाम को आजादी मिली है, पार्टीशन भी हुआ है, उनको पता है उन पे पत्थर बरसे गए हैं नॉर्थ वेस्ट में, लेकिन स्पीच में है कि एक सपना है, उसमें कहीं रैंकर नहीं है, किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला है। तो ये जो अनडाइल्यूटेड ड्रीम है ना, वो बहुत बड़े, वो मेरे ख्याल से दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा अच्छा स्पीच होगा, जहां एक सभ्यता अपने सबसे बड़े आकार में आ रही है कि मैं किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई देश नहीं है, और उस ड्रीम में हर आदमी शामिल है।
इसके 5.5 महीने बाद नेहरू को बहुत अप्रिय परिस्थितियों में देश को संबोधित करना पड़ा, जब नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। नेहरू ने यह भाषण बिना किसी तैयारी के एक्सटेम्पोर दिया था, बाद में उनके सचिव एमओ मथाई ने लिखा।
गांधी के पार्थिव शरीर को देखकर नेहरू कांपने लगे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके साथ ही रहूं। जब वो कार में बैठे तो मैंने उनसे कुछ कहने की कोशिश की। उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखकर मुझे रोक दिया। वो गहन चिंतन में थे। मैं उनके साथ ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो के अंदर तक गया। जैसे ही हरी बत्ती जली, नेहरू के मुंह से शब्द निकले, द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स।
फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स, द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स एंड देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर एंड आई डू नॉट क्वाइट नो व्हाट टू टेल यू एंड हाउ टू से इट। आवर बिलवड लीडर बापू, एज वी कॉल्ड हिम, द फादर ऑफ द नेशन, इज नो मोर।
वैसे तो भारतीय संसद में नाथपाई, फिरोज गांधी, पीलू मोदी और इंद्रजीत गुप्त जैसे कई वक्ता हुए हैं, लेकिन कहा जाता है कि अंग्रेजी में हीरेन मुखर्जी से अच्छे भाषण किसी ने नहीं दिए। लेकिन जहां तक हिंदी में भाषणों की बात है, अटल बिहारी वाजपेयी का कोई सानी नहीं। वाक्पटुता, शब्दों का चुनाव, सबसे बढ़कर उनकी डिलीवरी, लंबे लंबे पॉजेस और आंख मूंद कर उंगलियों को घुमाने की उनकी अदा, मानो वो गेंद को स्पिन कर रहे हों, लोगों को मंत्रमुग्ध करने के लिए काफी थी।
मुझ पर आरोप लगाया गया है और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया है। आरोप ये है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है और मैंने पिछले 10 दिन में जो कुछ किया है वो सत्ता के लोभ के कारण किया है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चीमटे से भी छूना पसंद करूंगा।
लेकिन वाजपेयी का सर्वश्रेष्ठ भाषण था जो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के निधन पर दिया था। उसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं है क्योंकि उस जमाने में संसद की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, लेकिन वो मार्मिक भाषण अपने आप में एक अनूठा भाषण था।
एक सपना अधूरा रह गया, एक गीत मौन हो गया और एक लौ बुझ गई। ये एक परिवार, पार्टी और समाज का नुकसान भर नहीं है, भारत माता शोक में है क्योंकि उसका सबसे प्रिय राजकुमार सो गया। मानवता शोक में है क्योंकि उसे पूजने वाला चला गया। दुनिया के मंच का मुख्य कलाकार अपना आखिरी एक्ट पूरा करके चला गया, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। सूर्यास्त हो गया है, लेकिन तारों की छाया में हम रास्ता ढूंढ लेंगे। ये इम्तिहान की घड़ी है, लेकिन उनको असली श्रद्धांजलि भारत को मजबूत बनाकर ही दी जा सकती है।
वाजपेयी की भाषण देने की कला न सिर्फ दूसरी पार्टी के सदस्यों में बल्कि उनकी पार्टी के लोगों में भी हीन भावना भर देती थी। लाल कृष्ण आडवाणी स्वीकार करते हैं।
1952 में 53 में जब वो पार्टी के एक राष्ट्रीय नेता के नाते राजस्थान आते थे, उनके भाषणों को सुनकर के जिस प्रकार से हजारों लाखों लोगों को वो मंत्र मुग्ध करके रखते थे, मेरे मन में एक कॉम्प्लेक्स डेवलप हुआ। और वो कॉम्प्लेक्स ये कि तुम भी राजनीति में हो, लेकिन राजनीति में व्याख्यान देना एक महत्वपूर्ण गुण है, पहलू है, तुम इसके लायक नहीं हो। मुझे याद है कि जब 1973 में उन्होंने मुझे कहा कि मैं 4 साल रहा हूँ पार्टी का अध्यक्ष, अब आप बनिए, मैंने कहा मैं नहीं बन सकता। मैंने कहा मुझे बोलना नहीं आता। कहा पार्लियामेंट में बोलते हो? मैंने कहा पार्लियामेंट में बोलना एक चीज़ है, लेकिन पब्लिक मीटिंग में हजारों लोगों के सामने बोलना, ये मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं बोल सकता। एक एक करके सब लोगों ने इनकार किया, तब मुझे बलना पड़ा, लेकिन दैट हैज ऑलवेज बीन अ कॉम्प्लेक्स विद मी।
लालू प्रसाद यादव के आज के दिन भले ही अच्छे न चल रहे हों, लेकिन उनके धुर विरोधी भी उनका भाषण सुनने का लोभ संवरण नहीं कर सकते।
मूर्ख नहीं है हम लोग, हैं पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं। केजरीवाल है कोई बताइए, केजरीवाल ये हम लोग का मार्गदर्शक बना हुआ है, ये हम लोग को टीच कर रहा है, ये हमको पढ़ा रहा है, ये अन्ना जी को ये बिल्कुल लोग मिसलीड कर रहा है।
टाइम्स ऑफ इंडिया के पूर्व संपादक अंबिकानंद सहाय कहते हैं,
लालू यादव भी लाजवाब है। वो अपने टारगेट ऑडियंस को रूरल रस्टिक अंदाज में जिस तरह रॉ नर्व्स को वो टच करते हैं, वो बेजोड़ है। वो दूसरा लालू यादव हो नहीं सकता है। ये लालू यादव की खासियत है कि बड़े खूबसूरती से उसने अपने को बिहार का सिनोनिमस बना दिया। आप किसी से हिंदुस्तान में पूछ लें, जब बिहार की छवि आती है कौन नाम सामने आता है, हर आदमी कहेगा लालू यादव।
हाल के दिनों में जिस भाषण की सबसे ज्यादा चर्चा हुई है वो है शशि थरूर का ऑक्सफर्ड यूनियन में दिया गया भाषण, जिसमें उन्होंने प्रजातंत्र का जन्म स्थान समझे जाने वाले ब्रिटेन की उसी की जमीन पर जनतंत्र के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की धज्जियां उड़ा दी थी।
Let me say with the greatest possible respect, you can, it's a bit rich to oppress, enslave, kill, torture, maim people for 200 years and then celebrate the fact that they're democratic at the end of it. We were denied democracy, sir. We had to snatch it, seize it from you. With the greatest of reluctance, it was conceded in India's case after 150 years of British rule, and that too with limited franchise.
वर्तमान राजनीति में नरेंद्र मोदी से अच्छा भाषण देने वाले कम लोग हैं। उनके कंटेंट में बौद्धिकता का पुट भले ही ना हो, लेकिन आम लोगों से उनका कनेक्ट जबरदस्त है।
उन्होंने कहा, जिस देश में 60% लोग अनपढ़ हो, वहां मोदी ऑनलाइन बैंकिंग की बात कैसे कर सकता है? मुझे बताइए साहब, कोई पढ़ा लिखा था क्या? मैंने कोई जादू टोना किया कि वो अनपढ़ हो गया? ये 60% अनपढ़ थे, ये रिपोर्ट कार्ड आपने किसका दिया जी, जरा बताओ तो।
देश के बुद्धिजीवी लाख कहते रहे कि वो सपने बेचते हैं, लेकिन उनका कम्युनिकेशन स्किल्स इतना जबरदस्त है कि बावजूद इसके कि वो सपने बेच रहे हैं, जनता उन पर यकीन करती है। ये बहुत जबरदस्त बात है कि मैं जान रहा हूँ कि ये चुनावी भाषण उनका है और बहुत से वायदे कर रहे हैं, खुदा जाने कितना वो सफल होगा नहीं होगा, फिर भी उनके शैली में ये अंदाज है कि जनता कन्विंस हो जाती है, और इसीलिए आज भी उनकी पर्सनल व्यक्तिगत क्रेडिबिलिटी की रेटिंग हाई है। उनको और भारतीय जनता पार्टी के क्रेडिबिलिटी को यदि आप देखेंगे तो आपको ये दो एंटिटी नजर आएंगे कि मोदी जी कुछ और है, भारतीय जनता पार्टी कुछ और, और शायद भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे लड़े तो सब जगह हार भी जाए।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।